بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. کے ساتھ ہفتہ وار سولہ جاب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر دہلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بہت ہی نازک اور مارکت العرا موضوع حدیث ثقلین. ہمارے یہاں شیعہ سنی روایت تاریخ کے جھروکوں میں ایک بہت ہی قدیم اختلاف ہے, ہزاروں سال اس پر بیت چکے ہیں اور امت دو دھاروں میں کھڑی ہوئی. ہماری کوشش ہے کہ غامدی صاحب سے علمی فکری استدلالی انداز میں ان چیزوں کو زیر بحث لائیں جن کی بنیاد پر نقطہ نظر قائم کیا جاتا ہے. اہل تشیعوں کیا جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں ایک بنیادی حیثیت حدیث ثقلین کی تھی. غامدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اور دوسری اطرتی کے الفاظ آتے ہیں. اصل حدیث کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مراد کیا ہے؟ غامدی صاحب آپ کی بات سامنے آ گئی تھی, میں کچھ توضیحی باتیں اس پر پوچھ کے آگے بڑھوں گا. اور ایک اور بڑی مارکت العرا روایت ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے اور اسی سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی اور اہل بیت کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد خلافت سونپ دی تھی اور آیت تطہیر بھی اسی کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ بیان کیجیے غامدی صاحب, حدیث ثقلین پر تو آپ نے نقطہ نظر دور دو چار کی طرح واضح کیا. کہا یہ گیا ہے کہ زید بن ارقم ایک صحابی ہیں, ان کی بھی ایک روایت ہے, بڑی کتابوں میں آئی ہے, وہ بھی یہی روایت بیان کرتے ہیں پوری کی پوری جو ہم نے پڑھی تھی, ایک اضافے کے ساتھ کہ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں. تو ان کی جو اہل بیت کی تعریف تھی اور جو آپ بات بیان کرتے ہیں اس میں کافی فرق ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ہیں لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام کی گئی ہے. اور اس کی پھر انہوں نے تعریف کی کہ عقیل کی, علی کی, جعفر کی اور عباس کی اولادیں, سب پر صدقہ بھی حرام ہے. اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے, آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی, سیدنا حسن نے گھر کے اندر کو کھجور کھا لی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ہم پہ صدقہ حرام کر دیا گیا ہے. تو بیان کیجئے گا سب سے پہلے کہ صحابی عربی بھی جانتے ہیں, صحابی رسول اللہ کے قریب بھی ہیں, وہ تو اہل بیت کی تعریف میں علی, عباس, عقیل کی اولادوں کو شامل کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے.
مجھے کیا کرنا ہے اور کسی اور کو کیا کرنا ہے, اس کا تعلق میری یا آپ کی ثوابدید سے نہیں ہے, اس کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے ہے. قرآن مجید کے بارے میں ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ دین کی برہانے قاطع ہے, یہ حیثیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے, اس کو ترازو بنا کر نازل کیا گیا ہے, وہ حق و باطل میں فرق کے لیے ہمیں دیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں بھی یہ نازل ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, لوگوں میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی بارہا بتائی جا چکی ہے کہ تین ہی مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ عربیت کے لحاظ سے لفظ کے معنی جان لیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, وہ کس کس معنی میں مستعمل ہے اس کو آپ معلوم کر لیں. اس کے بعد آپ اس جملے میں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے, ایک جگہ کیا ہے, دو جگہ کیا ہے یا اس سے زیادہ کیا ہے, اس کی تالیف میں رکھ کے اس کو دیکھیں کہ وہاں اس جملے نے اس میں کوئی تخصیص تو پیدا نہیں کر دی, کوئی تعمیم پر دلالت کرنے والی چیز تو نہیں ہے, اس کے معنی میں کوئی توسیع تو نہیں ہو رہی اس سے. یہ سب چیزیں جملے کے لحاظ سے دیکھیں. اور آخر میں ڈاک و سباق, یعنی وہ جملہ کہاں آیا ہے, کس سے آپ میں ہے. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں سب سے پہلے بیویاں ہیں. یہ ہماری اردو میں جیسے بولا جاتا ہے گھر والے, ویسے ہی لفظ اہل بیت. اہل بیت میں پورا خاندان کیسے ہو سکتا ہے, تو لفظ بیت ہی اس سے عبا کر رہا ہے. یعنی جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس لفظ کی ایک مجازی توضیع بھی ہوتی ہے, جس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں بھی میرے گھر میں آئے ہوئے ہوں, نواسے نواسیاں بھی, تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے گھر والے ہی ہیں. یا کوئی مجھے بلائے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو لے کے آئیے تو ان کو بھی شامل سمجھا جائے. یہ توسیعی مفہوم یہاں تک تو داخل کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اس گھر سے نکلے ہیں, اس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی یا ان کے والدین کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس توسیع کو پیش نظر رکھ کے شامل کر لیں. لیکن یہ کہ گھر والے اصلاً کون ہیں, آپ کی بیویاں, آپ کے بچے جو آپ کے پاس گھر میں رہتے ہیں, انہی کو کہا جاتا ہے. نہ اردو زبان میں इसको इससे आगे ले जाया जा सकता है, ना अरबी ज़ुबान में इससे आगे ले जाया जा सकता है। इस लफ्ज़ को कुरान ने दूसरे मकामात पर इस्तेमाल करके बता दिया है कि इसके हुदूद क्या हैं। इसमें तस्कीर, तानीस, वाहिद, जमा की कोई रियायत मलहूज नहीं रखी जाती। एक बीवी घर में है उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, हम भी करते हैं। यानी अगर कोई आदमी आपको दावत पे बुलाए और कहे घर वालों को लेके आइए, तो यहाँ ये बहस नहीं होती कि घर वालों कहा गया है, जमा है, मुजक्कर है, नहीं, वो बीवी को कहा जाता है। इसका ताल्लुक़ ज़ुबान के उर्फ इस्तेमाल से है, तो अरबी ज़ुबान में भी ऐसे ही है। तो इस वजह से जो इस रिवायत में लोगों को शामिल किया गया है, वो ज़ाहिर है एक रावी का बयान है। नहीं कहा जा सकता कि खुद ज़ैद बिन अरकम की तरफ भी उसकी निस्बत की क्या सूरत हाल है। इस तरह की रवायतों में कैसे चीज़ें इजाफा कर दी जाती हैं। लेकिन हम तो सबसे पहले कुरान मजीद में अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो अरबियत की रूह से देखेंगे। तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि अहले बैत का लफ्ज़ जहाँ भी अरबी में आएगा, घर वाले का लफ्ज़ जहाँ भी उर्दू ज़ुबान में बोला जाएगा, सबसे पहले उसमें बीवियाँ होंगी, बच्चे होंगे, इसके बाद तौसीन भी आपकी अगली नस्लों के लिए उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस घर से निकली हुई होती है। इससे ज़्यादा आगे उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। आल का लफ्ज़ तो पूरे ख़ानदान के लिए बोला जा सकता है, लेकिन अहले बैत एक घर वाले हैं, जैसे उर्दू में है वैसे ही अरबी ज़ुबान में है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि इसके बाद, यानी लफ्ज़ के बाद ही हमने जान लिए। अब ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, किसी लुगत में तो लिखा हुआ नहीं है, वहाँ एक सूरा में इस्तेमाल हुआ है, आया तथहीर भी उस सूरा में है। उसको आप पढ़िए, सादा तर्जुमा पढ़ जाइए, पूरी सूरा में मौजू ही रसूलुल्लाह की अजवाज है। यानी मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह के घर को हदफ बना लिया है। वो चाहते हैं कि बाकी हमले तो कामयाब नहीं हुए, अब कोई अखलाकी नौयत की बात पैदा करके, कोई स्कैंडल पैदा करके रसूलुल्लाह की शख्सियत को मजरू किया जाए। ये सारी बात सूरा में ज़ेर बहस है। उसमें अजवाज मुतहरात को बराह रास्त ख़िताब किया गया है और अजवाज नबी कह के ख़िताब किया गया है, और उनसे कहा गया है कि अब ऐसी नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसमें आप फैसला करें कि आपको इस घर में रहना है या नहीं रहना। रहना है तो उसके लिए ये पाबंदियां हैं, ये आदाब हैं, इनकी मैं इससे पहले वजाहत कर चुका हूँ। उसमें फिर ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम इन पाबंदियों का लिहाज करो, पूरी तरह मुतनब्बे रहो। ये लोग जो गलत चीज़ें, जो अख़लाक़ी नजासत तुम पर थोपना चाहते हैं, ये मुनाफिकीन, अल्लाह इनसे तुम्हें पाक रखना चाहता है। ये है पूरी बात। ये मज़मून जो मैंने आखिर में बयान किया, यही आया तथहीर का मज़मून है। युताहिरकुम तथहीरा, अल्लाह हर लिहाज से इनकी तोहमतों से तुम्हें पाक रखना चाहता है। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात के सिवा किसी की तरफ ध्यान भी जाए आदमी का। कुरान मजीद इतना वाज़े है, इतना मुबरहन है कि आदमी इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। ये कुरान का बयान है, ये मैंने वाज़े कर दिया। इसके वाज़े कर देने के बाद अब क्या एक मजहूल सी रवायत की बुनियाद पर कुरान को मनसूख कर दिया जाए, कुरान में तरमीम कर दी जाए? अच्छा, ये रवायत तो जैसी कुछ भी है, अगर कोई बुखारी और मुस्लिम की रवायत भी हो, मैं ये कहता हूँ उससे भी आगे बढ़कर कोई रवायत आ जाए, क्या वो कुरान मजीद पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कुरान मजीद में ना इसकी कोई गुंजाइश है कि अहले बैत का मिसदाक किसी और को करार दिया जाए, ना कुरान मजीद में इसकी गुंजाइश है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें किसी और को शामिल किया जाए। वहाँ सिर्फ़ रसूलुल्लाह की बीवियाँ ज़ेर बहस हैं, आपकी अजवाज ज़ेर बहस हैं। ये बात कुरान मजीद के हर तालब इल्म पर आखिरी दर्जे में वाज़े हो जाती है। बस एक ही शर्त है, और वो ये कि वो कुरान की बारगाह में जाते वक्त अपने तासुबात, अपने जज्बात और अपनी मालूमात को बाहर रख जाए, कुरान के सामने जाए और कुरान के सामने सर झुका कर जाए, कुरान से पूछे वो क्या कह रहा है। ये मैंने पूरी तरह वाज़े कर दिया था और बता दिया था। इस वजह से जो कुछ इस रवायत में बयान किया गया है वो अरबियत के भी ख़िलाफ़ है और कुरान मजीद उसको कबूल भी नहीं करता। कुरान में जो बात कही गई है उसमें उस तौसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है जो ज़ुबान की रूह से हो सकती है, इसलिए कि वहाँ सियाक व सबाक ने बिल्कुल मुतय्यन कर दिया है कि ज़ेरे बहस ही अजवाज नबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लम की अजवाज मुतहरात, उसके सिवा कोई और मानी लेने की कोई गुंजाइश नहीं।
नुकता बिल्कुल वाजह हो गया। गामी साहब, जैद बिन अरकम की रिवायत पे गामी साहब का तबसरा सामने आया, सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक और रिवायत है, हदीस किस्सा उसको कहा जाता है, ओढ़नी यानी चादर वाली रिवायत, जिसमें आप सल्लम ने कुछ इकदाम किए हैं। रिवायत में भी पढ़ के सुनाऊंगा। उस रिवायत की सनदी बहस में तो बहुत इख्तलाफात है, अहले सुन्नत उसको तस्लीम नहीं करते, उसकी सनत पर बहुत इश्कालात हैं, इस्तराबात हैं, उसके रावियों पर बहुत जरा नक़द किया गया है, लेकिन अहले तशय्यों की वो है, कुछ हदीस की किताबों में भी आ गई है। सनत की बहस से कतअ नज़र जो नफ्स मज़मून है उस पर गांधी साहब कुरान की रोशनी में क्या तबसरा करते हैं। रिवायत मेरे सामने फरमाया, सईद आयशा की बयान करती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह कढ़ाई वाली चादर ओढ़ रखी थी, चुनाचे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला उन्हों हजरत हसन रजी अल्लाह आए तो आपने उन्हें उसमें दाखिल किया, और फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला आए तो आपने उन्हें भी उसमें दाखिल किया, फिर सईदा फातिमा आई तो आपने उन्हें भी दाखिल कर लिया, और हजरत अली आए तो उन्हें भी अंदर दाखिल कर लिया। उसके बाद ही फरमाया कि ए अहले बैत, अल्लाह ताला तुम से नापाकी को दूर करके अच्छी तरह पाक करना चाहता है, युताहरिकुम तथीरा। वही आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इसी रिवायत से मिलते जुलते अल्फाज उम्मे सलमा की भी एक रिवायत में आए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा तफसील है। उस तफसील के मुताबिक बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज बुलावा दिया है और फिर इन हज़रात को बुलाया है और फिर चादर में शामिल किया है, और उम्मे सलमा जो ख़ुद अज़वाज मुतहरात हैं, जब चादर में शामिल होना चाहिए तो उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि तुम तो ऑलरेडी इसमें हो। इनसे भी इस्तदलाल करके कहा जाता है कि आयत तथीर नाजिल ही उस वक्त हुई जिस वक्त रसात माफ सल्लम ने अपनी बेटी, अपने दामाद और अपने नवासों को उसमें शामिल किया, और अहले बैत की आयत उस वक्त पढ़ी जिस वक्त के ये लोग वहाँ पे मौजूद थे।
ये रवायत बुखारी में है, मुस्लिम में है, मुअत्ता इमाम मालिक में है, हदीस की पहले दर्जे की किसी किताब में है। तो जब कोई रवायत इन किताबों में ना हो और फिर उसको कुरान के मुकाबले में पेश करने की जसारत की जाए, तो जसारत करने वालों को गौर करना चाहिए। सबसे पहले मैं भी तबसरा नहीं करता इस पर, मुझे मालूम है कि इस रवायत में क्या कीलो काल है, इसकी सनदों पर क्या बहस की गई है, छोड़ दीजिए उसको, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो उतनी बात इसके बारे में कहनी चाहिए कि किसी मौके पर मोहब्बत के जज्बात के साथ हुजूर ने अपने बच्चों को अपनी चादर में लिया, बेटी है आपकी, ये तो घर वाले होते ही हैं, और उनके बारे में दुआ की कि जिस तरीके से मेरी बीवियों के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया है कि वो हर अखलाकी नजासत से उनको पाक देखना चाहता है, मैं इनके बारे में भी यही ख्वाहिश रखता हूँ। इसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया है, ये कोई बुरी ख्वाहिश है, और इसमें लफ्ज़ की तौसी जिस हद तक ज़ुबान इजाज़त देती है, क्या उससे कोई तजावुज़ हुआ है, तो बस उसको वहाँ रखिए। इससे उन दो बातों पर क्या असर होगा, यानी कुरान मजीद में अजवाज मुतहरात ही के बारे में जो कुछ कहा गया कहा गया है, और हदीस सकलैन में अजवाज मुतहरात ने जो कुछ कुरान के बारे में कहा है उसकी रोशनी में मैंने बता दिया था पिछली नशस्त में कि चूंकि आपकी अजवाज मुतहरात आपके बाद इस उम्मत की जिम्मेदारी थी, उनको पाबंद कर दिया गया था कि वो निकाह नहीं कर सकती, वो इस घर से जा नहीं सकती, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि उनके मामलात को देखें, उनकी हिफाजत करें, उनकी किफालत का बंदोबस्त करें, इसलिए हुजूर ने उनके बारे में फरमाया कि अल्लाह की किताब को हिदायत के लिए मजबूती से थामे रहो, और ये मेरी बीवियां हैं, मैं इनको तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इनके ऊपर कुछ जायद पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ये अपना कोई नया घर नहीं बसाएंगी, तो ज़क्किरो कुमुल्ला फ़ी अहद बैती, मैं अपनी इन अजवाज के बारे में तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूँ, ऐसा ना करना कि इनकी कोई एहानत हो या इनकी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से अदा ना करो, ये बच्चों को उनकी माओं के बारे में नसीहत की गई है, इसको मैंने वाजे कर दिया।
ठीक, अच्छा हम सब, इसमें रिवायत में ये भी आता है कि उस मौके पर बहुत सारे मुफस्सरीन लिखते हैं कि आयत अथीर के शान नुज़ूल ही असल में ये वाक़ है, जब ये हुआ इसके बाद ये आयत नाजिल हुई और इस आत्मा सल्लम ने भी उस मौके पर पढ़ दी। जो आयत है जिसका आपने जिक्र भी किया, कई दफ़ा ज़ेर बहस भी आई उसका, और चादर में अपने बच्चों को लेकर, अपने पोतों को ले, नवासों को लेकर, अपनी औलाद और दामाद को लेकर जो बात कही जा रही है उसको तो कुरान सरीहतन इनकार करता है, चूंकि आयत तथीर के अंदर जो नफ्स मज़मून ज़ेर बहस है उसका इस वाक़े से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
यह बिल्कुल मैंने वाजे कर दिया कि आयत तथीर अज़वाज मुतहरात के बारे में उसी सियाक में आई है, जिसका जी चाहे कुरान मजीद को उठाए और उठाकर सूरह अहज़ाब को पढ़ डाले, सादा तर्जमा पढ़ डालिए, कोई उसमें अदना तरद्दुद नहीं रहेगा। इस वजह से ज़्यादा बात इस रवायत की बुनियाद पर यह कही जा सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने बच्चों के बारे में भी ये दुआ की या ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह हर तरह की अखलाकी नजास्तों से पाक रखे। बड़ी पाकीज़ा दुआ है अगर आपने की किसी मौके पर और रावी ने उसको इस तरीके से बयान कर दिया है, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, ना इसका इनकार करने की कोई वजह है।
ठीक। अच्छा, हम सब आखिरी सवाल इसी रिवायत के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा इस्तदलाल किया जाता है इस रिवायत से कि बाकायदा तौर पर साथ पाँच सौ ने अपने बात के फैसलों को कर दिया, तो अगर कोई पैगंबर दुनिया से रुख्सत हो रहा है और उसने दीन के बाब में इतना बड़ा फैसला करना है कि आपके बाद अगर कोई नज़म इज्तमाही बनेगा, किसी खिलाफत के अंदर नज़ा पैदा होगा, तो लोग फैसला करते हुए मेरे अहले बैत को तरजीह दें, मैंने उनकी कुछ सुपुर जिम्मेदारियाँ कर दी हैं, उनकी फजीलत, उनका मरतबा, उनका मकाम तकद्दस सबसे आगे है, तो उसके लिए ये सिर्फ एक एक्ट करना कि चादर के अंदर आपने ले लिया और वो जहरी बात घर के अंदर मामला हुआ, अगर उम्मे सलमा इसको नकली ना करती लोगों को पता ही ना होता, तो जो इस्तदलाल इस सब से किया जा रहा है, इसकी जो भी हैसियत है सनद की मान भी लिया जाए, तो वो इस्तदलाल तो होता नहीं, वरना तो रसूलुल्लाह को बाहर निकलना चाहिए था, खुतबा देना चाहिए था और फिर फैसला करना चाहिए था उनके बारे में।
ये सारे अकली सवालात हैं, बेमानी बातें हैं। लोग असल में जब कुछ तासुबात कायम कर लेते हैं तो फिर इसी तरीके से जहाँ से तिनका मिल गया उसको भी शतीर बना के पेश कर देते हैं। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़े है, उसमें कोई अदना तरद्दुद नहीं है, वो खुदा की बुरहान है, कोई बाहर की चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती, ना कोई शान नज़ूल उसकी बारगाह में पेश की जा सकती है। सूरह अहज़ाब हर हर लिहाज से वाज़े तौर पर बता रही है कि किन का मसला ज़ेर बहस है, किन के बारे में हिदायात दी गई हैं, किन के बारे में यह आयत तथहीर है। और जो हदीस सकलैन है उस पर मैं तबसरा करके बता चुका कि उसमें जो बात कही गई है वो क्या है। मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ इनके मामले में, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह याद दिलाने का कोई महल होना चाहिए ना। उस रवायत को कुरान की रोशनी में जैसे मैंने समझा है मैंने उसको वाजे कर दिया, और रवायतों को हमेशा अल्लाह की किताब की रोशनी में समझनी चाहिए, ना कि अल्लाह की किताब को रवायतों के ताबे करना चाहिए। ये तरतीब मुसलमानों को अब उलटनी चाहिए, वो नहीं उलटेंगे तो इसी तरह की अहमकाना चीज़ों में उलझे रहें।
बिल्कुल वाजह हो गया है। एक और बड़ा मशहूर वाक्य है जिसके बारे में इस्तदलाल करके कहा जाता है कि अल्लाह के पैगंबर ने अपने बात के कुछ फैसले हैं जो उसमें सुनाए हैं, गदीर खुम का वाक्य है, खुतबा हजरतुलविदा से वापसी के मौके पे रसूलुल्लाह का एक खुतबा है, उसके अंदर सैयदना अली के बारे में कुछ बातें की गई हैं, उन बातों की हकीकत क्या है, रिवायत का पस मंज़र क्या, सब कुछ जेर बहस आएगा। वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।